ஓம் சாந்தி. आप विशेष रूप से हमारे निमंत्रण पर इस सेमिनार कम रिट्रीट में पधारे हैं. आशा रखते हैं सभी को बहुत अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था मिल गई होगी और सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन भी अवश्य कराया होगा. तो हम आज के इस उद्घाटन समारोह की संध्या का शुभ शुरुआत करेंगे. मैं सर्वप्रथम आज के इस मंच की सज्जा, आज के इस मंच के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रही हूं. ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के इंडियन हाई कमिश्नर भी पधारे हैं. तो मैं अनुरोध करूंगी कि आदरणीय भ्राता गौरी शंकर गुप्ता जी आप मंच पर पधारें. आदरणीय भ्राता सतीश सोनी जी जो मुंबई से पधारे हैं. आदरणीय भ्राता विलास भुजन जी जो दिल्ली से पधारे हैं. आदरणीय भ्राता भानु प्रताप सिंह जी जो आप राजस्थान माउंट आबू के हैं. आप सबसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच की शोभा बढ़ाएं. साथ ही साथ आज के इस सभा की अध्यक्षा आदरणीय मीरा दीदी, आदरणीय सुमन बहन, आदरणीय रविंद्र भाई, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें. विलास भुजन जी जो दिल्ली से पधारे हैं, अगर सभा में बैठे हुए हैं तो आप आ जाएं. ब्रह्मा कुमारी संस्था के एक सिस्टम के अनुसार हम इस कार्यक्रम की शुरुआत उस परम शक्ति की श्रेष्ठ स्मृति से करेंगे. एक दिव्य गीत बजेगा. आप इस समय बाकी सब बातों को अपने मन से निकालकर उस गीत पर ही, अगर अपने आप के गीत के शब्दों पर आप एकाग्र कर उस प्रभु स्मृति में टिकने का प्रयास करें. तो चलते हैं थोड़े समय के लिए प्रभु स्मृति के क्षणों में.
सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान.
हार्टी वेलकम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में जहां प्राकृतिक सौंदर्य भी स्वागत करता हुआ प्रतीत होता है, इस मनोरम सुमधुर वातावरण में आप सबका ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सब यहां पर आए बड़ी खुशी की बात है कि कल से ही यहां आप सबका कुछ मंगलमय जो कुछ हमारे भाई बहन है कल से आए और आप सभी यहां आज पधारे हैं, तो आप सबके मंगलमय आगमन से प्रकृति ने भी एक नया मोड़ लिया और यहां पर बरसात शुरू हो गई। बाहर देखिए कितना खुशनुमा मौसम है और ऐसा लगता है खुशनुमा मौसम मस्त बहार सभी के चेहरों पर लाई है निखार। खुशनुमा मौसम मस्त बहार सभी के चेहरों पर लाई है निखार। चहुं और सुगंधित पुष्प खिले हैं और खिले हैं गुलाब। कहता है हमारा दिल भले पधारे आप यहाँ आए। वैसे भी राजस्थान की संस्कृति में ये बहुत प्रसिद्ध है, पधारो मारो देश। तो आप यहाँ पधारे तो आपका स्वागत है बारंबार बारंबार। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे आदरणीय मंच का, सम्मानीय मंच का पुष्पों द्वारा व बैजेस द्वारा स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है। आप हैं हमारे त्रिनिदाद के इंडियन हाई कमिश्नर, मेरा बहन आभ्राता सोनी जी, आदरणीय सुमन बहन एवं रविंद्र भाई। स्वागत की श्रृंखला में मैं कुमारी रुचिता को आमंत्रित कर रही हूँ, वो नृत्य द्वारा आपका स्वागत करेंगी। कुमारी रुचिता जो मुंबई से पधारी हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से। कुमारी रुचिता
शुभ सागर
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रुचिता, क्योंकि स्वागत के भी अनेकानेक तरीके हैं, नृत्य के द्वारा, शब्दों के द्वारा बहुत से तरीके हैं। तो मैं पहले ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन उनको आमंत्रित करती हूँ, जो हमारी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको इस संस्था के बारे में और साथ ही साथ आपका शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगी। यू आर ए ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी, और आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1992 में अपना जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित किया, और तब से ही आप ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं यहां दे रही हैं इसी कैंपस में रह के। शी इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेटर ऑफ लिविंग वैल्यूज इन इंडिया, लिविंग वैल्यूज ए प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय एजुकेशन विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एंड शी इज ऑल्सो ए ट्रेनर इन वैल्यू एजुकेशन। साथ ही साथ आप एक राजयोग शिक्षिका भी हैं और यहां इस एकेडमी की फैकल्टी मेंबर भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप संस्था के बारे में और साथ ही साथ आप शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत करेंगी। ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर आसीन आदरणीय मिस्टर गौरी शंकर गुप्ता जी, इंडियन हाई कमिश्नर टू ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, आदरणीय मिस्टर सतीश सोनी जी, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमटीडीसी मुंबई, परमादरणीय मीरा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग, आदरणीय कमलेश बहन और आदरणीय रविंद्र भाई, और सभा में उपस्थित सभी आत्मीय भाई और बहनें, आज कितना ना खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? क्योंकि इतने सारे हमारे भाई बहने हमसे आकर के मिले हैं। पुनः क्या कह सकते हैं, आप अपने घर में आपके लिए स्वागत हम कहे, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत कहे, आपका दिल क्या कहता है? कि आपको लगता है कि आप अपने घर में आए हैं? इसलिए हम बारंबार आपके ही घर में आपका हम स्वागत करते हैं। ये घर आपका इसीलिए है क्योंकि ये परमात्मा का घर है। परमात्मा के घर होने के नाते हम सभी का एक अधिकार बन जाता है इसके ऊपर, ना केवल परमात्मा के ऊपर लेकिन परमात्मा की जो स्थापना है उसके ऊपर। तो इसीलिए गीत में भी कहा गया था, ये परमात्मा का द्वार है, भगवान का द्वार है और पिता का द्वार है। तो पिता के घर होने के नाते आप अपने संतान समझ करके पिता के घर आप आए हैं। तो पिता के घर सब जब आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? एक सुगुन महसूस करते हैं, एक शांति, एक सुख, एक आनंद का अनुभव हम सभी करते हैं। तो इसीलिए यही हमारे हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपका यहाँ जो आपका रहना होगा बहुत सुखद रहे, और ना केवल तन के लिए लेकिन मन के लिए भी। तन से तो निश्चिंत है ही, क्योंकि ना ऑफिस में जाने की चिंता है ना खाना पकाने की चिंता है। तो एटलीस्ट 3 दिन तो निश्चिंत होकर के आप यहाँ अपने पिता के घर रहेंगे, और मन के लिए भी एक खुराक आप सभी के लिए मिलेगा। दिन भर जो सेशंस यहाँ चलेंगे, मन को तंदुरुस्त, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे नुक्से, बहुत सारी बातें आप सुनेंगे और उसको ग्रहण करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। न केवल ये पिता का घर है लेकिन शिक्षक का यूनिवर्सिटी भी है, इसीलिए इस संस्था को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक यूनिवर्सिटी है, जिस कैंपस में आप आए हैं उसका नाम है एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। सो आप एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, एक एकेडमी में आए हैं। इस एकेडमी में कौन सी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे, कैसे आत्मा को सशक्त बनाएं, एम्पावर्ड बनाएं और सर्व गुणों से कैसे हम संपन्न बने, ताकि क्योंकि आजकल के समय जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम अपने आप को एम्पावर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो शिक्षाएं दी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग्स दी जाएगी, वो मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आत्मा को एम्पावर्ड बनाने के लिए बहुत मदद आपको करेगा। और तो तीसरी बात है, ये सद्गुरु का घर भी है। सद्गुरु के घर में क्यों जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत होती है। जब ब्लेसिंग्स हमारे सिर पर है, चाहे वो बड़ों की, पेरेंट्स की, समाज की जो ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो बहुत मुश्किल परिस्थितियों से भी हम बहुत इजीली गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यहां आकर के आप उस सद्गुरु के घर में उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, ना केवल उनके ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे लेकिन दूसरों के भी ब्लेसिंग्स लेने का तरीका आप सीख जाएंगे। इसीलिए इस संस्था में एक चौथा सब्जेक्ट भी है जिसको हम सेवा करते हैं। एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्सिटी में, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान जो स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ दिया जाता है, उसको समझना और अच्छी रीति उसको क्लैरिटी के साथ उसको एक स्पष्टीकरण हमारे जीवन में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा सब्जेक्ट है मेडिटेशन, राजयोग, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हम कर सकते हैं और आत्मा को सशक्त बना सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। जब जो वर्च्यूज हम सीख रहे हैं, हमको पता है, बड़े बड़े लिस्ट हमको पता है वर्च्यूज क्या है क्या नहीं है, लेकिन किस हद तक हम अपने जीवन में धारण किया, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए धारणा भी एक सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी में। और चौथे सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा, जो हमें प्राप्त हुआ है हम दूसरों के साथ बांटते चले ताकि हम दूसरों के भी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पिता के घर, टीचर की यूनिवर्सिटी और सतगुरु के घर समझ करके आप यहाँ 3 दिन यहाँ रहेंगे, उसका आनंद आप उठाएंगे और अपने आप को सशक्त बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे कहा गया है कि इस संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म कुमारीज के नाम तो सुने हुए हैं लेकिन ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 में सिंध हैदराबाद में स्थापित हुआ। तो दादा लेखराज हम कहते हैं, या ब्रह्म बाबा के चित्र हम यहाँ देखते हैं, वही दादा लेखराज थे। डायमंड के व्यापार आप करते थे, हीरे जवाहरातों का व्यापार किया करते थे, लेकिन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण से उन्होंने 13 गुरु किए थे, पूजा पाठ दान पुण्य बहुत किया करते थे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए उनके जीवन में संपन्नता थी। 9 कोटि नारायण कहलाते थे, इतने धनवान थे, लेकिन इतने पूजा पाठ सब कुछ करते हुए भी अंदर से एक खालीपन था। वो खालीपन क्या है, परमात्मा कौन है, या फिर मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उनको प्राप्त नहीं था। तो अचानक एक दिन उनको इस संसार का महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। किस रीति से बॉम्ब्स से एक मास डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि 1936 में एटॉमिक बॉम्ब इन्वेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो देखते थे कि आग के गोले ऊपर से आकर के धरती को स्पर्श कर रहे हैं और एक वो स्फोटित हो रहे हैं, ऐसे महाविनाश देख रहे हैं। दूसरे प्रकार के विनाश उन्होंने देखा कि प्रलय या नेचुरल कैलामिटीज, कहीं भूकंप हो रहा है, कोई प्रलय हो रहा है, कहीं फैमिन पड़ रहा है, तो ऐसे नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा विनाश। और तीसरा जो उन्होंने तरीका उन्होंने देखा कि सिविल वॉर्स, धर्मों के बीच लड़ाई, भाई भाई के बीच लड़ाई, नेबर्स के बीच लड़ाई, तो ऐसे सिविल वॉर्स के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, हम सभी को पता है ये कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन इसके बाद किया, क्योंकि ये विजन देखने के बाद उनके मन में बहुत दुख हुआ, ये सब इतना मास डिस्ट्रक्शन देखते हुए इतने लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरा एक साक्षात्कार देखा, वो है सत्युगी नई दुनिया का संसार, जहां सब प्रकार की संपन्नता होती है, सब प्रकार के फुलफिलमेंट्स होते हैं, जब वहां धन अथाह होगा, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर मूल्य भी अथाह होगी। तो इसीलिए उन देवी देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसी दुनिया की स्थापना इस संसार में होने वाला है, माना इट्स गोइंग टू चेंज, पूरा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ऐसे कलयुगी दुनिया जो दुख से भरा हुआ है, ऐसे कलयुगी दुनिया का परिवर्तन एक सुखद संसार जो हर धर्म में प्रचलित है। हिंदू धर्म में हम स्वर्ग कहते हैं, गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, तो हर धर्म में एक परफेक्ट टाइम का जिक्र है, चाहे वो अलग अलग नाम से हम पुकारते। तो ऐसा समय आने वाला है, लेकिन ऐसा समय आने के लिए हमारा प्रिपरेशंस क्या है? फिर वो लक्ष्य लेकर के इस संस्था की स्थापना हुई निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा। तो इसीलिए इस संस्था का मुख्य मोटो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम ये ना कहे कि ये परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए, नहीं, मुझे परिवर्तन होना है। जब मैं परिवर्तन हो जाऊंगी, मुझे देख करके अनेक लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तो अनेक लोगों को इंस्पायर करते करते घर घर को स्वर्ग बनाने का लक्ष्य है। यही नारा लेकर के 1936 से यह संस्था चल रही है, घर बार को छोड़ना नहीं है आपको, लेकिन घर घर को स्वर्ग बनाना है। आपको लगता होगा कि ब्रह्म कुमारी इसमें आएंगे, शायद आपको घर सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, हमारे जैसे व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे जो डेडिकेटेड भाई बहने हैं केवल 15,000 है, लेकिन आप जैसे जो फैमिली में रहते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं वो 9 लाख हैं, जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी इस संस्था के साथ जुड़ करके ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए घर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे महान लक्ष्य लेकर के जब ये संस्था स्थापित हुआ, वो केवल एक छोटा सा गैदरिंग, छोटा सा संगठन से शुरू हुआ, केवल 1,500 भाई बहनों, बहनें ज्यादा थी लेकिन भाई कम थे। तो लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन हुआ 1950 में, वो संस्था फिर यहाँ माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। 1950 से लेकर माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स रहा है, और तब से लेकर के यहाँ जगह जगह पर सेवा केंद्र खुलने लगे। लेकिन जब कराची और हैदराबाद जो अभी पाकिस्तान में है वहां जब थे, 14 साल उन्होंने अखंड तपस्या की 250 लोगों ने, तो अखंड तपस्या करके जो फाउंडेशन मजबूत किया, फिर यहाँ आने के बाद जगह जगह पर धीरे धीरे एक एक सेंटर्स खुलने लगे। अभी हम कह सकते हैं 926 कंट्रीज में हमारे राज्य का सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, करीब 10,000 सेंटर्स हैं। तो अलग अलग सेंटर्स के साथ जुड़ करके इतने सारे भाई बहने अपने स्व परिवर्तन के लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इस संस्था यूकोसॉक और यूनिसेफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, यूएन यूनाइटेड नेशंस के साथ, जो वहां हायर लेवल में भी ब्रह्म कुमारीज एक योगदान दे रहे हैं वर्ल्ड लेवल में। और उसके साथ साथ राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है इस संस्था का। जैसे आज आप आए हैं शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के तरफ से, ऐसे ही हमारे 18 विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, कल्चरल विंग, सोशल सर्विस विंग, मीडिया विंग, एजुकेशन विंग, बिजनेस विंग, स्पोर्ट्स विंग, ऐसे 18 विंग्स हैं। किस लक्ष्य से इन विंग्सों को बनाया गया है कि हर प्रोफेशन के लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े, और हर व्यक्ति को मन की शांति की जरूरत है। कौन कहता है आज के दिन में हमको मन की शांति की जरूरत नहीं है? हर व्यक्ति को जरूरत है, और मन की शांति को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है वो है जो शांति का स्रोत है उनके साथ जुड़ने से। तो 3 दिन आप जब यहाँ रहेंगे तो आप मेडिटेशन के तरीके भी आप सीख लेंगे और उसकी अनुभूति भी आप सभी करेंगे। और यही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आपका जो यहाँ रहना होगा बहुत सुखद रहे, बहुत ही एम्पावर्ड हो, और एक नया जीवन में एक मोटो लेकर के यहाँ से जाए, और जीवन परिवर्तन के लिए एक शुरुआत यहाँ से आप सभी करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन। आपको जब सुना रही थी कि संस्था का मोटो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे एक बात याद आई। गालिब ने कहीं कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो आज हम सब चाहते हैं बेटरमेंट इन आवर लाइफ, इन आवर होम्स, इन आवर फैमिली, इन आवर सोसाइटी, इन आवर प्रोफेशन। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कहीं हमें स्वयं को भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से सुमन बहन को धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच माउंट आबू राजस्थान से पधारे भानु प्रताप भाई जी यहाँ आ गए हैं। मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता भानु प्रताप भाई जी, और बहनों से अनुरोध है कि आप पुष्प द्वारा और बैजेस द्वारा उनका स्वागत करेंगे। हमारे इस प्रभाग के चेयरपर्सन हैं आदरणीय सम्माननीय भ्राता ओम प्रकाश जी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से हमारे यहाँ पर हर वर्ष सेमिनार होता है और हर वर्ष उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन इस वर्ष वो यहाँ पर हेल्थ के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं। आदरणीय मीरा दीदी यहाँ ज्ञान सरोवर में आने से पहले विशेष उनको मिलकर आई थी, और उन्होंने विशेष कहा है कि मेरी अवश्य ही आप सबको शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देना। तो उनकी तरफ से भी, भले वो साकार में फिजिकली रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेंटली या यूं कहीं मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में ही है। तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे प्रसिद्ध मधुर वाणी ग्रुप, आपने मैं समझती हूँ शायद 2000 से भी ज्यादा गीत लिखे होंगे, और इनमें से कोई भी भाई या बहन जो भी इसके ग्रुप में होता है कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इतनी बखूबी से ये गीतों की रचना करते हैं और संगीत रचते हैं और खुद गाते भी हैं। तो आज हमारे बीच दो भाई यहाँ पधारे हैं, भ्राता सतीश भाई जी, भ्राता रमेश भाई जी, वो आपके बीच एक सुंदर प्रस्तुति रखेंगे और उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, खुशियों से भरा अंतर प्रभु का उपहार है, मधुरवाणी ग्रुप।
जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है, ऐसी बारिश जैसी खुशियाँ सब पे बरसाइए, ऐसी बारिश जैसी खुशियाँ सब पे बरसाइए। करता करता ये ज्ञान सरोवर स्वागत और सत्कार है, स्वागत और सत्कार है, स्वागत और सत्कार है, जीवन की खुशियों पर, जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है। हरगिज ना होगी कम, ये बांटने से और भी बढ़ती रहती है हरदम, खुशियाँ बांटते चले ये हरगिज ना होगी कम, ये बांटने से और भी बढ़ती रहती है हरदम, वीरा में चमन खिलाइए अधरों पे खुशी गिराइए, वीरा में चमन खिलाइए अधरों पे खुशी बिखराइए, जो खिलता फूलों सा मिलता उसको प्रभु का प्यार है, उसको प्रभु का प्यार है, जीवन की खुशियों पर, जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है। आध्यात्मिकता ही सच्ची खुशियों का आधार है, राजयोग से सद्गुण मिलते मिलती शक्ति अपार है, आध्यात्मिकता ही सच्ची खुशियों का आधार है, राजयोग से सद्गुण मिलते मिलती शक्ति अपार है, भगवान बना जिनका साथी क्या कर सकते तूफान भी, भगवान बना जिनका साथी क्या कर सकते तूफान भी, सागर से पार करते आपका बेड़ा पार है, आपका बेड़ा पार है, जीवन की खुशियों पर, जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है, खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है। दहन विमानन उद्योग वाले आए खुशियों के कान पाके हर मन है मुस्काए जल परिवहन विमानन उद्योग वाले आए खुशियों के कान पाके हर मन है मुस्काए जीवन खुशहाल बनाने जन्मों के भाग्य जगाने जीवन खुशहाल बनाने जन्मों के भाग्य जगाने है आपको यहाँ बुलाया रचना सुख संसार है रचना सुख संसार जीवन की खुशियों पर जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है
और आप जहाँ पर आए हैं ये खुशियों की खान है ये आपका परिवार है अपना
अरावली पर प्रभु परम धाम से आया धरती पर आकर उसने ये प्रभु परिवार बनाया
आबू अरावली पर
प्रभु परम धाम से आया धरती पर आकर उसने
ये प्रभु परिवार बनाया
है स्वर्ग से भी सुंदर ये आपका अपना ही घर है स्वर्ग से भी सुंदर ये आपका अपना ही घर
अपनों का प्यार पाने आना सौ सौ बार है आना सौ सौ बार है
जीवन की खुशियों पर जीवन की खुशियों पर सबका ही अधिकार है खुशियों से भरा अंदर ईश्वर का उपहार है ऐसी बारिश जैसी खुशियाँ सब पे बरसाइए ऐसी बारिश जैसी खुशियाँ सब पे बरसाइए
करता ये ज्ञान सरोवर करता ये ज्ञान सरोवर स्वागत और सत्कार है स्वागत और सत्कार है स्वागत और सत्कार है
जीवन की खुशियों पर सबका अधिकार है खुशियों से भरा अंतर ईश्वर का उपहार है
अति सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोर से तालियां बजाकर आप इनका धन्यवाद करेंगे दोनों भाई हमारे सतीश भाई और रमेश भाई जी हमारे बीच न्यू दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भ्राता संजय जैन जी पधारे हैं उनसे अनुरोध है आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें भ्राता संजय जैन जी आदरणीय भ्राता संजय जैन जी कहते हैं लमों की खुली किताब है जिंदगी लमों की खुली किताब है जिंदगी कभी धूप कभी छांव है जिंदगी इस जिंदगी का क्या कहना इस जिंदगी का क्या कहना कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी जिंदगी के अनेक रंग हैं इस जिंदगी के अनेक रंग हैं बना लो इन्हें खूबसूरत इस जिंदगी के अनेक रंग हैं बना लो इन्हें खूबसूरत खुश रहो खुशी बांटते चलो इसी का तो नाम है जिंदगी खुश रहो खुशी बांटते चलो इसी का तो नाम है जिंदगी तो प्यारे भाइयों और बहनों जीवन तो जीवन है आप इसको जिस रंग में रंगना चाहें आप उस रंग में रंग सकते हैं चॉइस आपकी है चाहे तो आप इन्हें खुशियों के कलरफुल रंगों से रंग लो और चाहे तो आप इन्हें गमों और दुखों के डार्क कलर से रंग लो, ये हमारी ही चॉइस है, हमारी ही पसंदगी है। बट वी ऑल नो वेरी वेल दैट ईच वन ऑफ अस इज ऑलवेज सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। व्हाटएवर एफर्ट वी आर मेकिंग, वी ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, वी ऑलवेज ट्राई टू लिव ए हैप्पी लाइफ एंड जॉयफुल लाइफ। लेकिन वो जॉय कहां है? व्हाट इज दैट जॉय? कहां मिलेगी, कैसे मिल सकती है इस संसार में रहते हुए, इस तकनीकी युग में, इस आधुनिक युग में? इसीलिए इस सेमिनार कम रिट्रीट का हमने जो विषय चुना है वो है जॉय ऑफ लाइफ। इस विषय पर हम 3 दिन चर्चा करेंगे और आपस में मिलकर हम अपने साथ एक बहुत सुंदर सी बात ले जाएंगे ताकि हमारी जिंदगी सदैव के लिए खुशनुमा बन जाए, हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाएं। तो मैं अब विशेष रूप से हमारे जो यहाँ पर आदरणीय, मैं भ्राता ही कहूंगी, चाहे हम कहने के लिए कहते हैं आदरणीय मेहमान, लेकिन जैसे पहले ही कहा गया कि आप सभी हमारे भाई और बहन हैं, मैं विशेष रूप से जो हमारे मंच पर उपस्थित एवं आप सभी भाई बहन हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो विंग है जल थल और नभ, उसका एक बड़ा हसीन संगम है शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म। इस सेमिनार में अब तक जो यहाँ पर भाई बहन पधार चुके हैं, लगभग 510 भाई बहन आ चुके हैं और 50 से 70 के करीब कल पहुंचने वाले हैं। तीनों ही सेक्टर से, एयरलाइंस, शिपिंग और टूरिज्म से, और यहां तक जो होटल से कनेक्टेड हमारे भाई बहन हैं और टूर्स एंड ट्रेवल्स के कुछ भाई बहन हैं, इसके बीच में हैं। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत इस प्रभाग की ओर से स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूं कि लगभग 14 साल से हम इस प्रभाग की सेवा प्रभाग के अंतर्गत कर रहे हैं। यूं तो कुछ जगह में सेवाएं तो हमारी बहुत समय से चल रही थी, लेकिन ये सेवाएं हम 14 साल से कर रहे हैं और काफी सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, देन सिंगापुर एयरलाइंस, ये एयरलाइंस के कुछ एरियाज हैं। इसी प्रकार इनके जो अलाइड ग्रुप्स हैं, ऐसे ही शिपिंग एरिया में हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसी प्रकार जैसे मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट है, इसी प्रकार चेन्नई का पोर्ट ट्रस्ट है, ऐसे ही और भी कई हैं और डिफरेंट एयरपोर्ट्स भी हैं, वहां पर भी सेवाएं हमारी रेगुलर रूप से चलती हैं। और टूरिज्म की सेवाएं हमारी इस प्रकार से चली, हमने लगभग भारत के 12 राज्यों में और एक नेपाल में हमने लगभग 9 अभियान निकाले हैं, कैंपेन निकाले हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट है लिंकिंग हार्ट्स। लिंकिंग हार्ट्स हमारा ये बहुत खूबसूरत टूरिज्म का प्रोजेक्ट है और उनके भी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म न्यू दिल्ली से कल यहाँ हमारे बीच में होंगे, वहां से भी कुछ लोग और आने वाले हैं। तो इस तरह से ये सेवाएं हमारी चल रही हैं और इसके लिए विशेष हमारा कोर्स बना हुआ है जिसका नाम है फाइंडिंग योर कंपस ऑफ लाइफ, और जो हमारा टूरिज्म का कोर्स है उसका नाम है उदय, उसके अंतर्गत भी हमारे कोर्सेज चलते हैं। और इन सभी कोर्सेज का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पेशली रिलेटेड टू द एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर उसको ही जागृत कर दिया जाए तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पिरिचुअलिटी के और मेडिटेशन के और वैल्यूज के बेसिस पर किस तरह से प्रोफेशनल हम प्रोफेशंस को भी ठीक कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास चल रहा है। तो मैं अभी विशेष रूप से हमारे बीच जो मुंबई से पधारे हैं हमारे आदरणीय भ्राता सतीश कुमार सोनी जी, मैं कहूंगी कि काफी वर्षों से, लगभग मैं समझती हूँ 4 साल तो हो गए हैं कि मीरा बहन का आपसे काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। एमटीडीसी में आप इस समय मैनेजिंग जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ आप डायरेक्टर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पद पर भी हैं और आपने बहुत सी सेवाएं, जब हमारा मुंबई में एक अभियान शुरू हुआ था मुंबई से गोवा तक का, उस अभियान में भी आप तो खुद स्वयं नहीं पधार सके थे जबकि आप आने वाले थे, लेकिन आपने अपने यहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भेजा था और हमेशा समय प्रति समय हमारी दीदी या दीदी की कोई भी बहन आपसे मिलती रहती हैं और आप हमारे निमंत्रण पर यहां पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं उसका आपका बहुत बहुत समय निकाल कर आप आए हैं तो मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत आभार करती हूं। आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टफोलियो, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छे कुशल समाज सेवक हैं। मारवाड़ी युवा समिति, मारवाड़ी सम्मेलन, ये सब आप करते रहते हैं, कई प्रकार की आप समाज सेवाएं करते रहते हैं और आप अमरावती में केबी सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट के आप चेयरमैन भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना यहां जो आज का जो हमारा ये प्रसंग है उद्घाटन, तो उसके संदर्भ में और ये हमारा जो विंग है उसके संदर्भ में आप अपने हृदय के उद्गार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय भ्राता सतीश सोनी जी।
मंच पर विराजमान आदरणीय मीरा बेन भाई, भारत के विदेश के राजदूत जो भारत में, भारत का नाम विदेशों में जिम्मेदारी संभालते भाई गौरीशंकर जी, सुमन बेन और व्यासपीठ पर सभी गणमान्य व्यक्ति भानु प्रताप सिंह, रविन्द्र भाई और दूर दूर से पधारे भाई और बहनों, आप सभी का इस टूरिज्म विंग जो बोला गया है एविएशन शिपिंग एंड टूरिज्म विंग के प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और पहली बार ऑर्गेनाइजर का आभारी हूं कि इन्होंने मुझे यहां बुलाया, इतना बड़ा मंच आपसे रूबरू बात करने का मौका दिया। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था, अभी भी नहीं लगता है कि मैं ऐसा हूं कि जो आपसे कुछ बात कर सकूं, लेकिन एक मीरा बेन का प्रेम है, उनका आग्रह था कि मैं आना चाहिए और लोगों से मैं प्रोग्राम अटेंड जरूर करने आऊंगा, तो आज मुझे बोले कि आपको बात करनी है। आप सबके सामने मैं छोटा आदमी क्या बात करूं, यही मुझे एक महसूस हो रहा है, लेकिन गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो ये उद्बोधन न समझते हुए अपनी आपस की बातचीत समझी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं आप में से एक हुई, मैं आपको पहले से ही समझता हूं और अभी और ज्यादा, एक साल से मीरा बेन का हमारा योग ही ऐसा हुआ जमा ऐसा कि टूरिज्म प्रमोशन का काम महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड करती है, उसी सिलसिले में एक बड़ा भव्य आयोजन हमने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में करने का प्रयास किया था, उनके तक यह खबर पहुंची और उनका न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा एक आश्रम है, तो बहन ने मुझे बताया कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो आयोजन क्या के लिए होता है, तो मैंने बोला ये टूरिज्म प्रमोशन और महाराष्ट्र का जो कल्चर है, जो महाराष्ट्र की चीजें है उसको विदेशों में प्रमोट करना, वहां तक कि अपनी संस्कृति को पहुंचाना और उन लोग को महाराष्ट्र में बुलाना, इंडिया में बुलाना, ये हमारा उसका एक मतलब होता है। बोले क्यों, कारण क्या है, क्योंकि एक विदेशी पर्यटक यदि भारत में आता है तो 9 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार और स्वयं रोजगार मिलता है, बाकी कोई भी इंडस्ट्री जितना रोजगार लोगों को देती है, हमारा ऐसा मानना है टूरिज्म में, इसलिए नहीं कि टूरिज्म ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम लागत में ज्यादा लोगों को अपन रोजगार और स्वयं रोजगार दे सकते हैं और लोग उसमें उसका आनंद उठा सकते हैं। आज के प्रोग्राम का नाम भी देखिए, जॉय ऑफ लाइफ। लोग जुने जमानों से टूरिज्म करते आ रहे, अभी टूरिज्म को अपना अलग अलग नाम से देखते, तो पहले क्या था, मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र में देखो एक यात्रा कंपनियां होती थी जो अलग अलग 50-100 लोग, 200 लोग लेके सीनियर से, उस वक्त सीनियर लोग जाते थे कि नहीं अभी 50 साल हो गए, 55-60 साल का हो गया, तो अभी मुझे पहले बात तो अपने चार धाम देखने हैं, फिर बच्चे भी कुछ अच्छी जगहें देखनी है और घूम के आना है, ताकि मैं आगे स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, जो जो भी है, जो किसने देखा नहीं बात करते अपन उसके लिए था। अभी ये कंसेप्ट बदल गया है नए जमाने में, अब लोग वो एकदम बूढ़े होने की राह देखते नहीं, लोग बोलते पहले मैं इंडिया टूर, पहले जहां रहते महाराष्ट्र टूर कर लूं, महाराष्ट्र में क्या अच्छी चीजें वो देख लूं, फिर बोलते और जो टूरिज्म के राज्य है, राजस्थान है, केरला है, वो देख लूं, कश्मीर देख लूं, फिर बोलते अपना एशिया देखूं और फिर बोलते वर्ल्ड देखूं। ये अपनी अपनी मात्रा है, जिसकी शक्ति है, जिसकी इच्छा है, जिसकी ताकत है, वो हिसाब से लोग इस क्षेत्र में आते हैं। अब महाराष्ट्र में लोग आते किस लिए आना चाहिए, तो सबसे अच्छी बीचेस महाराष्ट्र में है, अच्छे अच्छे शिवाजी महाराज के 350 फोर्ट्स महाराष्ट्र में है, अपने यहां के जो अलग अलग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में कई जगह पे, अजंता बुद्धिज्म के प्रचार के लिए देखने के लिए जापान से और क्यूबेक से दुनिया के लोग आते हैं, अजंता देखते हैं, एलोरा देखते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव देखते हैं, नहीं, अभी अपन ने सातारा डिस्ट्रिक्ट में कांस प्लेटू है जो 19 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ वो देखते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट देखने आते लोग, ताड़ोबा है, पेंच है, सिल्लारी है, देर टाइगर का बड़ा लोगों को शौक रहता है। दूर से गए तो नजीक डरेंगे, लेकिन टाइगर स्पॉटिंग होनी चाहिए। तो ये सब प्रयास किस लिए होता है? एक आनंद लेने के लिए। टाइगर देखने के बाद आनंद कितना होता है भगवान, गाड़ी में देख के अच्छा लगता है, नजीक आया सामने तो कैसा लगेगा किसको। तो जॉय ऑफ लाइफ ये क्या होता है? तो टूरिज्म के माध्यम से ही जॉय ऑफ लाइफ जुड़ता है, ऐसा मुझे खुद को लगता है। मैं टूरिज्म के क्षेत्र में 2-3 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी पहले से ही पर्यटन के लिए निकलता है। एक छोटे कस्बे से निकल के आदमी डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी जाता है तो क्या होता है? वो अपने रोज रोटी के लिए जाता है, दूसरी नई चीज देखता है, घर में आके वो शेयर करता है, जिसने जो देखा वो चीजें परिवार में आके बताना या आपस में बांटना, ये शेयरिंग ऑफ लाइफ है, जॉय ऑफ लाइफ ही कि मैंने क्या देखा और मुझे क्या करना है। एक खरीद बार नदी में पानी अच्छा चल रहा है उसको भी देखते आदमी का मन प्रसन्न होता है, जैसी झाड़ियां देखते। आज मैं यहां नीचे भाई गौरीशंकर जी के साथ इनके उद्यान में देखने आया, ऐसा लग रहा है कि कहां है अपन। मैं बहुत जगह देशों में घूमता हूं टूरिज्म के माध्यम से, 10-20 देश मैंने टूरिज्म के लिए देखे, पूरा इंडिया घुमा, महाराष्ट्र घुमा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज अपने नजदीक होती है उसको अपन न देखते दूर भागते हैं। आज माउंट आबू जैसे जगह में इतना सुंदर कार्य चल रहा है, कितने लोग को मालूम है? मालूम होगा नहीं, बात ऐसी बात नहीं कि ऐसी और इसकी जरूरत मालूम, लोगों को मालूम होना जरूरी है कि ऐसा एक विश्वविद्यालय है जो लोगों को अपनी आप अनुभूति बांटने का, आपस में मिलने का, बांटने का अनुभव प्रदान करने वाली एक संस्कृति यहां खड़ी हो रही है। और इतना सुंदर सभागृह, इतनी व्यवस्था है, ये खुद मैं सुबह से देख के मैं प्रभावित हूं। प्रभावित होना इतना बोलना गलत बात है, गुप्ता जी से शेयर कर रहा था मैं कि कैसा ये लोग मैनेज कर पाते हैं। तीन बातें यहां पे है, दे डोंट आस्क फॉर डोनेशन। अभी आप यहां से अलग अलग सेक्टर से लोग आए, जेएनपीटी से लोग आए इत्यादि, उनसे बोलते नहीं कि 50 लोग आए 1000 रुपये फीस गुण लो, 50 रुपये भरो, ऐसा नहीं बोला जाता है। और आपको सेवाएं तो पूरी देती है, यहां रहने के लिए अच्छा बढ़िया कमरा है, खाने की अच्छी व्यवस्था है, और आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, और वो भी पैसा नहीं। अब मेरी उम्र भी 50 साल होगी, मैंने ऐसा देखा ही नहीं कभी कि फ्री में और जबकि मन से ऐसा करने वाली कोई संस्था है उसके बीच आप है। मैं खुद को अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार का काम यहां इस क्षेत्र में हो रहा है। और मीराबेन का वापस से धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाया, क्योंकि यहां नहीं आवे, मराठी में कहते ना गेले शिवकळत नहीं, जब तक आदमी जाता नहीं अनुभव लेता नहीं, कुछ नहीं समझता, वो दूर से ही बातें करते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में अनुभूति है कि अपन लोग यहां आज सब मिल रहे हैं, माध्यम से मिल रहे हैं, आज हम स्टेज पे आप नीचे हैं, लेकिन कल से हम आपके साथ ही रहेंगे ताकि आपस में मिल बांट के अपन एक में के अनुभव जो शेयर कर सके। अब टूरिज्म सेक्टर जो है उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन्होंने आज बुला ली यहां पे, शिपिंग, एविएशन, एक होटल वाला भी हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, नया नाम होटल है, जूना नाम धर्मशाला था, चौल्ट्रीज, लोग वहां रहते थे। आजकल लोगों को सुविधा ज्यादा चाहिए, क्यों ना हो, पैसा है तो सुविधा भी होनी चाहिए, अच्छा रहने को चाहिए अच्छा, लेकिन ये एक क्षेत्र है हमारे टूरिज्म में के जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं उसमें होटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, गाइड सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, टैक्सी, एक टैक्सी वाला भी टूरिज्म का इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से टैक्सी ड्राइवर के ट्रेनिंग के लिए भी जुड़े, इन लोगों ने आके जब मैं टैक्सी ड्राइवर ट्रेनिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में चालू किया कि भाई एक विदेशी पर्यटक आता है तो उससे अच्छी ढंग से टैक्सी ड्राइवर ने बात करनी चाहिए, टैक्सी बहुत नहीं लेकिन साफ सुथरी तो देनी चाहिए, उसने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, अच्छी ढंग से बात करना चाहिए, मुंबई में आ रहा है तो मुंबई की थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। इसलिए हमने कुछ सेशन रखे, उसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के लोग आए कि नहीं, हम इन लोग को ट्रेन करने के लिए 40 मिनट का एक सेशन देंगे ताकि उनका इनलाइटेड मैनो और अच्छी तरह से अपने टूरिस्ट से बात कर सके। हमारा जो प्रयास है वो उनमें हमको साथ देना चाहती है, उनके प्रयास में हम उनको साथ देना चाहते हैं, और दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो एक ही है कि कैसे भी करके अपने यहां आने वाले टूरिस्ट को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे सके, उसका अच्छा, और वापस जब वो उसके देश जावे या दूसरे राज्य में जावे तो बोले कि महाराष्ट्र में मैं गया था, गुजरात में मैं गया था, राजस्थान में गया था, मुझे अच्छी चीजें दिखने को मिली, अच्छा मिला। ये उद्देश्य के लिए आज इनसे हमारा टूरिज्म पहले ही जुड़ चुका है, इस साल भी हम 20 सितंबर में अमेरिका में कर रहे हैं, शायद हम उसके लिए भी और जुड़ेंगे और अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान बांटने का काम करने का हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा भाषण देना यहां उचित नहीं है, कि जो चीज है जो बोलनी चाहिए दीदी ने बोला मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको खुद को यही बोलना चाहूंगा कि इनका जो प्रयास है, ये ज्ञान का सागर है आपस में मिल बांटने का, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और आप सभी से मिलकर इस क्षेत्र में आगे ये जो सेवा है मेरे तरफ से जो छोटी मोटी जो शक्यता पॉसिबल जो होगा मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा और आपके एक इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने का हिस्सा मैं बनना चाहूंगा। फिर से आप सभी को भाइयों का स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सोनी जी। अभी तो आप यहाँ आ गए हैं और अभी हमारे संबंध यूं तो पहले से ही घनिष्ठ हैं। अभी जैसे आपने कहा आप हमारी सेवाओं में सहयोग देना चाहते हैं, हम आपकी सेवाओं में सहयोग देना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमने खुद भी अनुभव किया है कि पीछे हम लोगों ने न केवल टैक्सीज वाला लेकिन रिक्शा वालों को भी हम लोगों ने बुलाया था, उनके प्रेसिडेंट, उनके यूनियन प्रेसिडेंट को बुला के हमारा एक प्रोग्राम हुआ था फरवरी में इसी वर्ष में, और उनको बुलाने से जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके अंदर परिवर्तन आता है और उनका ये कहना है कि हमारे साथ इतने स्नेह से कोई बात ही नहीं करता है, इसीलिए उनकी जो आदत है उसी प्रकार की हो जाती है। तो जैसे भगवान का कहना है अगर किसी को भी हमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा यंत्र है वो है स्नेह, और वो स्नेह है सच्चा स्नेह जिसको हम रूहानी स्नेह कहते हैं। और यही ब्रह्मा कुमारी बहने या ब्रह्मा कुमारी बहनों का जो परिवार है पूरा, यही हमको सिखाता है कि आपस में हम मिलजुल कर प्रेम से रहें और यही शिक्षा हम सबको देते हैं। तो आपका एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारी दिल्ली से पधारे हुए भ्राता संजय जैन जी को, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से पधारी हैं और आप विजिलेंस में जी जनरल मैनेजर हैं। तो आपसे अनुरोध है आप अपने विचार इस सेमिनार के प्रति रखें। आदरणीय भ्राता संजय जैन जी।
ओम शांति। मंच पर आसीन ब्रह्म कुमारी मीरा बहन, सुमन बहन, भाई गौरी शंकर जी, भाई सोनी जी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहन तथा ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी भाई बहन, आप सबको मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का के प्रति अपना धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आकर आप सबके सामने दो बात कह सकूं। मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और जैसा कि मेरे से पहले भाई सोनी ने भी कहा कि मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं यहां आके कुछ कह सकूं, लेकिन क्योंकि बहन का आदेश हुआ है तो मैं कुछ अपने बारे में या कुछ जो मैं फील करता हूं या मैं यहां जो कुछ जो मेरी आशा है कि मैं यहां से क्या सीखने आया हूं तो कुछ दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि माउंट आबू के इस शानदार परिसर में, ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस परिसर में ये मेरा पहला मौका है कि मैं यहां आकर इस ये जो तीन दिन का सेमिनार है जिसका कि शीर्षक है जॉय ऑफ लाइफ, ये मेरे को पहली बार सौभाग्य मिला है कि मैं यहां आकर इसको अटेंड करूं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल नहीं जुड़ा रहा, टीवी के माध्यम से तथा और सेमिनार के माध्यम से जो कि हमारे शहरों में अलग अलग जगह होते रहते हैं, और इसके अलावा हम अपने कार्यालयों में भी अपने ऑफिस में लेक्चर्स के माध्यम से लेक्चर्स वगैरह करवाते हैं कई प्रोग्राम्स में, जैसे कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक में जो कि नवंबर माह में होता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं, बहुत कुछ बहुत अधिक मुझे जानकारी नहीं है, ये मैं बिल्कुल आपसे सत्य रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन जैसा बहन ने पहले कहा और जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट शीर्षक है इस सेमिनार का, जॉय ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल में हम में से ऐसा कोई नहीं है कि जो अपनी लाइफ में खुशियां ना चाहता हो। हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, चाहे कोई भी हो, उसको जीवन में खुशियां चाहिए। लेकिन हम ढूंढते कहां हैं? हमें ये नहीं पता कि खुशी कहां मिलेगी, हमको तरीका नहीं पता कि खुशी कैसे मिलेगी। और जैसा कि बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही शॉर्ट शब्दों में कहा गया कि बाहर ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर झांकोगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। और इसीलिए ये जो उद्देश्य है, यहां का जो मोटो है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे, खुश रहेंगे, तो विश्व भी सुखी रहेगा, खुश रहेगा। और इसके अलावा खुशी, आज हम देखते हैं आजकल की जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हर आदमी के पास, किसी से पूछो क्या करो, यार टाइम नहीं है भाई, सुबह उठ के भाई तबीयत क्यों खराब है, शुगर क्यों बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई हो रहा है, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, टाइम नहीं है। हर चीज के लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, ऐसा क्यों? वही काम हम रिलैक्स रह के, शांत रह के, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसी काम को खुद भी टेंस रहें। और ऐसा लगता है कि जब हम खुद टेंस होते हैं तो हमारे आसपास दो चार लोग और भी टेंस हो जाते हैं, और स्ट्रेस और उसी का कारण होता है कि तरह तरह, ये भौतिक रूप में देखा जाए तो ये बीमारियां, और मानसिक रूप से देखा जाए तो ब्लड प्रेशर और ये सब जो होता है हमारी जिंदगी में आता है, हम सब उससे परेशान होते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो मैं दो चीज सीखने आया हूं, एक तो जो मानसिक बल और आत्मिक बल जो हमें प्रदान होगा ही, जो हमें मिलेगा ही, और इसके अलावा जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम अपनी जिंदगी को कैसे आसान, कैसे सुखमय, और उसके द्वारा उसके साथ ही अपने परिवार को, जब हम सुख रहेंगे तो हमारे परिवार भी सुखी रहेगा, हमारे ऑफिस में काम करने वाले हमारे भाई बहन, हमसे नीचे कार्य करने वाले, हमसे ऊपर कार्य करने वाले, शायद वो भी स्ट्रेस फ्री और ज्यादा सुखी रह पाएंगे। तो मेरा तो यही, मैं तो इसी उद्देश्य के साथ इस सेमिनार में आया हूं, और मेरे साथ और 25 भाई बहन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से यहां आए हैं, उनका भी यही उद्देश्य है। और काफी जो मेरे हमारे साथ आए हैं उनमें से लोग पहले भी आ चुके हैं, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया यहां आने के लिए कि आप एक बार जरूर जाएं, आप एक बार जाएंगे तो शायद बार बार जाएंगे। और यही मैं देख रहा हूं कि जो पहले आए हैं वो लोग बार बार आते हैं यहां पे, एक बार आने के बाद ऐसा कोई नहीं होता कि जो यहां दोबारा आने को इच्छुक ना हो। और इससे, ये तो मैं अपने बारे में ही कह सकता, इतना मैंने बताया आपको, इससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं आपको ज्यादा कुछ बोलूं। इसके साथ ही आपसे बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा। ओम शांति।
बहुत खूब आपने कहा कि आप यहां पर आत्मबल, वो क्या होता है, मनोबल क्या होता है। और डेफिनेटली जब हमारे कल से यहां पर मॉर्निंग के सेशन शुरू होंगे, जिनको हम योग शिविर के सेशंस कहते हैं, राजयोग रिट्रीट के सेशंस कहते हैं, उनमें बहुत सी बातें यहां पर बताई जाएंगी जो हमारे आत्मसाध का एक बड़ा सहज तरीका है, और जिससे जीवन के अंदर हमें वो विधियां सीखने को मिलती हैं जो हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जैन जी। आपको मालूम रहे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है पीस ऑफ माइंड चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होता है, और एवरी फ्राइडे हमारे एक नए कार्यक्रम का यहां पर उद्घाटन होता है, और उस उद्घाटन सेरेमनी को हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल पे 5:30 या 6 बजे से टेलीकास्ट किया जाता है। आज तो आप यहां पर हैं, लेकिन आप वैसे भी इस चैनल को अपने स्थान पर वहां पर देख सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारे आदरणीय भ्राता भानु प्रताप सिंह जी को। आप राजस्थान माउंट आबू से ही हैं, और आप राजस्थान टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आपने अनेक ट्रेड फेयर्स, अनेक जो हमारे फेयर्स आदि होते हैं टूरिज्म से कनेक्टेड, उसमें आपने अपने डिपार्टमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया है। यहां तक कि आप बर्लिन में भी इस संबंध में वहां पर आप गए हैं। और साथ ही साथ आप सबको मालूम होगा कि राजस्थान बहुत ही विदेशों में भी टूरिज्म के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि यदि एक विदेशी भारत में, अगर तीन विदेशी भारत में आते हैं तो उसमें से दो विदेशी राजस्थान में जरूर जाते हैं, क्योंकि अद्भुत कला और ऐतिहासिक स्थान का ये बड़ा सुंदर संगम है राजस्थान। और यहाँ कई प्रकार के मेले होते हैं, जैसे डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ जैसलमेर, कैमल फेस्टिवल ऑफ बीकानेर, मारवाड़ फेस्टिवल ऑफ जोधपुर, ब्रिज फेस्टिवल ऑफ भरतपुर, ये बड़े फेमस प्रसिद्ध हैं और ये हर वर्ष, लगभग हर वर्ष होते हैं और उनका आप आयोजन करते रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी मेडिटेशन में बहुत ही रुचि है और आप हमारे यहाँ पधारे हैं, माउंट आबू में ही रहते हैं, आप तो बिल्कुल ही गंगा के नजदीक हैं और इस गंगा में तो आप रोज ही नहा सकते हैं, आपके लिए तो इतना आसान है। तो आप अपनी शुभकामनाएं इस सेमिनार कम रिट्रीट के प्रति देंगे आदरणीय भ्राता भानु प्रताप सिंह जी।
नमस्कार। सम्मानित मंच पर विराजमान बहन मीरा जी, बहन सुमन जी, भाई संजय जैन, जीएम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे बीच इसी मंच पर विराजमान बतौर चीफ गेस्ट श्री गौरी शंकर जी गुप्ता, इंडियन हाई कमिश्नर टू ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े श्री सतीश सोनी साहिब, डायरेक्टर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमटीडीसी मुंबई, आपका तप, त्याग और अध्यात्म की धरती माउंट आबू में हार्दिक स्वागत है। और इसी मंच के जानिब से, मंच के सामने विराजमान दाएं से बाएं और प्रथम से अंतिम पंक्ति तक बैठे सम्मानित बहनें और भाइयों का माउंट आबू में मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। पर्यटन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई धर्म, जाति, उम्र का कोई महत्व नहीं है। यहां तक कि यह कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्म से मरण तक पर्यटन ही पर्यटन है, कोई न कोई एक्टिविटीज इससे जुड़ी हुई है, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो या किसी आत्मा को कृतज्ञ ज्ञापित करने के प्रति जो हमारी संस्कार एक्टिविटीज हैं, सेरेमनीज हैं, उनके माध्यम से हो। परंतु एक ऐसी संस्था जो अध्यात्म से जुड़ी हो, अगर वो अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन के हर पहलू को बड़ी संजीदगी से अपने में, अपने एक्टिविटीज में संजोए हुए हैं, तो वो एकमात्र, जहां तक मेरा जानकारी है, ब्रह्म कुमारी संस्थान है, जो कि अपने अध्यात्म, ये एक टूरिज्म का पार्ट है, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये भी टूरिज्म का पार्ट है, उसी में भी सेवाएं देते हैं, ये पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करने के लिए भी इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। देश विदेश के टॉप ब्रास एडमिनिस्ट्रेटर, जिनके लिए उनके ही फील्ड में महारत हासिल करने के लिए, अच्छी सेवाएं देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से आयोजित तो होते रहते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, साइंटिस्ट हो या किसी और वर्ग से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी ये संस्था बहुत उमदा किस्म की एक्टिविटीज आयोजित करती हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूं। और विशेषतः पर्यटन के लिए जब माउंट आबू का नाम आता है, राजस्थान माउंट आबू का नाम आता है, इस संस्था का मैं इसलिए आभारी हूं कि सुबह उठते ही जब टीवी देखते हैं तो विश्व के कोने कोने में माउंट आबू का नाम जरूर संदेश पहुंचता है, जिस कारण आज हमारे बीच में लगभग 25 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष यहां आते हैं और जिनका यहां प्रवास बहुत लंबा रहता है। यही संस्था का ही योगदान है जो कि माउंट आबू शब्द को विश्व के हर कोने में पहुंचाती है, चाहे अपने ऑडियो वीडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या विभिन्न भाई बहनों के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच के अपनी सेवाएं देते हैं। कि कहां से आपने ये सीखा, तो नाम यही रहता है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू। मैं शुक्रिया हूं, आभारी हूं ब्रह्म कुमारी संस्थान का जो ये विभिन्न एक्टिविटीज आयोजित करती हैं। आशा करता हूं कि आप सभी जो देश संभवतः कुछ एक विदेश में भी अपनी सेवाएं देते हैं, आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस संस्था के माध्यम से ही 3 दिन के लिए, और मौसम भी बाहर आप जाके देखेंगे आपका स्वागत कर रहा है, रिमझिम रिमझिम बुछारे आपके स्वागत के लिए प्रकृति ने भी न्यौछावर की है। शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रकृति का कि आपका स्वागत कर रही है वो भी। और 3 दिन के इस कार्यशाला में आप पाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट वाकई में ही जिस चीज के लिए सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित करता है उसके अनुरूप एहसास भी करवाता है। शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता भानु प्रताप सिंह जी। बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि यहाँ पर माउंट आबू की प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि 25 लाख टूरिस्ट यहाँ पर हर वर्ष आते हैं, और ऐसा आशा है कि और भी लोग यहाँ आते रहेंगे। और एक और आशा आपसे है, जैसे टूरिज्म के प्रोग्राम हम राजस्थान में कई राज्यों में कर चुके हैं, कई स्थानों पर कर चुके हैं, उदयपुर, अजमेर, देवगढ़, जयपुर। इसी प्रकार हमारा भाई जी से विशेष अनुरोध है कि आप टूरिज्म के क्षेत्र में, जिसके साथ होटल इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, उसके अंदर यदि आप कुछ ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम कराने का हमें एक अवसर प्रदान करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमें एक सेवा का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम कई स्टेट्स में हो चुके हैं, जिसके अंदर बिहार है, महाराष्ट्र है, हैदराबाद सिटी है, ऐसे ही गुजरात है, ऐसे ही कर्नाटक है, गोवा है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, ऐसे कई जगह हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें और बढ़ावा दिया जाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा इसमें एक बहुत बड़ा इसके अंदर प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्लीनिंग की बात करते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी प्रोजेक्ट है क्लीन इंडिया। तो उसके अंतर्गत भी हम लोगों के अंदर ये प्रेरणा लाते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर ये हाइजीन की जो अवेयरनेस है वो अवश्य आनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमारे बीच पधारते रहें। अब होगा हमारा इस उद्घाटन का शुभ आरंभ किसके द्वारा? दीपों के द्वारा। तो कहते हैं दीप एक जलता है तो उस एक दीप से अनेक दीप जल जाते हैं। आप दिखाई देखिए बल्ब से बल्ब नहीं जलता, लेकिन एक दीप जला देंगे तो अनेक दीप जल जाएंगे। और ये ऐसे दीप हैं, जब हमारे अंदर ये जो दीप हम आज जगाएंगे, ये केवल ये आपको देखने में आ रहे फिजिकल लैंप्स, लेकिन आज हम ये संकल्प लेंगे कि इन दीपकों के साथ हमारे मन के अंदर आत्म जागृति का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आध्यात्म जागृति का एक दीप जगे। और जब वो दीप जग गया तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे अनेक वो दीपक भी साथ ही साथ जग जाएंगे। तो मैं जो हमारे जिन हमारे भाई बहनों को दीप प्रज्वलित के लिए आमंत्रित किया गया है उनको भी अनुरोध करती हूँ वो स्टेज पर आएंगे। और साथ ही साथ मंच पर जो हमारे आदरणीय मेहमान आदरणीय भाई बहन बैठे हैं उनको भी अनुरोध करती हूँ आप आगे आएं और दीप प्रज्वलित करें। और इस हमारे सेमिनार कम रिट्रीट का आप उद्घाटन करें।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए
आप सभी ने अपने मन में शुभ संकल्प का दीप जगा लिया होगा। और मुझे एक बात याद आ रही है, एक वीक में दो दिन, एक वीक में सात दिन होते हैं। अगर हम ये सोच लें कि दो दिन कोई चिंता नहीं करनी है तो शायद आपका जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा। और वो दो दिन कौन से हैं, कोई बता सकता है? दो दिन अगर हम चिंता करना छोड़ दें और सोच लें हम खुश रहेंगे दो दिन, बहुत खुश रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और वो दो दिन हैं यस्टरडे एंड टुमारो, तो आपका सारा जीवन जो है वो खुशहाल हो जाएगा। तो ये संकल्प आज हम यहाँ लेते हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे। कहते हैं जीवन में सुख आए तो हंस लो, जीवन में सुख आए तो हंस लो, दुख आए तो हंस के उड़ा दो। तो ये भी एक तरीका है कि हम कैसे अपने जीवन की खुशी को अपने पास कायम रख सकते हैं। अभी होगा हमारे बीच अध्यक्षीय उद्बोधन। आज एक मंच की विशेषता है, यूं तो बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में त्रिनिदाद एंड वहां के जो हमारे हाई कमिश्नर हैं वो यहां पर पधारे हुए हैं, और साथ ही साथ मुंबई से सतीश सोनी जी भी पधारे हैं, और साथ ही साथ भानु प्रताप भाई जी भी हैं। लेकिन एक विशेष कॉमन बात है तीनों में, आप ओरिजिनली अगर देखा जाए तो राजस्थान से हैं, और राजस्थान में हमारा हेडक्वार्टर है। ये भी शायद आप भी राजस्थान से हैं। अच्छा, तो ये भी एक विशेषता है आज के इस मंच के। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच हमारे आदरणीय भ्राता गौरी शंकर गुप्ता जी यहाँ पर दो दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, और जैसे कि आपको बताया गया कि आप इंडियन हाई कमिश्नर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हैं, लेकिन उससे पहले आपने अनेक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट संभाले हैं, जिसमें से कई कंट्रीज हमारी बाहर की बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं, जैसे मंगोलिया, मनीला, इसके अलावा हमारे हंगरी, बोस्निया, हर्जेगोविना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जिसके अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ आप इंडियन मिशन के जो यूनेस्को जो है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को है, उसके आप अल्टरनेट मेंबर ऑफ इंडिया वहां पर भी आप रह चुके हैं। आप एक बहुत बड़े लेखक हैं। आज जब आप यहां पर पधारे तो उन्होंने आते ही एक बड़ी सुंदर सी बुक निकाली और कहा कि उन्होंने कहा जो मैं आपको ये बुक देना चाहता हूं। इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, न केवल अंग्रेजी भाषा में लेकिन साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी वो बुक ट्रांसलेट हो चुकी हैं। इनकी एक बुक है अनरैवलिंग मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट विजडम, जो कि इंग्लिश और हंगरी भाषा में ये बुक है, और अभी वो जो चेक और रोमानी भाषा में और हिंदी भाषा में वो ट्रांसलेट हो रही है। और ये बुक देखिए, ये है अनरैवलिंग मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, ये इनकी किताब है, ये इनका फॉरेन एडिशन है। ऐसे इन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं भारत के, जो उसका स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको भी काफी स्टडी किया है, वेदों का भी स्टडी किया है, उसको भी आप मानते हैं और आज हमारे बीच में है। टूरिज्म है तो यहाँ पर इस शिपिंग एविएशन टूरिज्म के सेमिनार में आप आए हैं, तो आप वहां पर भी जाकर इस टूरिज्म को, भारत के टूरिज्म को, या वहां पर जाकर लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि भारत में आए और यहाँ पर आकर यहाँ की जो रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको आप जाने। तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अध्यक्ष उद्बोधन हमारे सामने रखें, आदरणीय भ्राता गौरी शंकर गुप्ता जी।
ओम शांति। राजयोगिनी बहन मीरा जी, बहन सुमन जी, महाराष्ट्र प्रांत के, राजस्थान प्रांत के टूरिज्म ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव सतीश जी सोनी, भानु प्रताप जी, और संजय जी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे अधिक आप सब लोग जो यहां पधारे हैं अपना समय निकाल के, इस बहुत ही सुंदर जगह पे आप पहुंचे हैं और बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर आप यहां पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को मेरा हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को उन्होंने यहां बुलाया और मुख्य अतिथि बना के सम्मान दिया, और जो शब्द इन्होंने मेरे प्रति कहे, मैं उन शब्दों पे लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं नहीं जानता कि वो शब्द मेरे लिए बहुत ही जेनरस हैं, और ये इनकी जेनरोसिटी है कि इन्होंने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं इस संस्थान का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने विश्व के 136 देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। इन देशों में इन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया है। विदेशों के बहुत से लोग इस संदेश से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और वो इस कड़ी में शामिल होकर अपने अपने देशों में इस शांति, सद्भाव और विश्व प्रेम का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो मैं ब्रह्म कुमारीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग तालियां बजा के इस संस्थान का अभिनंदन करें। जैसे मेरे पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति भी आज आप पे न्योछावर है, क्योंकि आप बहुत सुंदर कार्य के लिए यहां आए हैं और बादल उमड़ के बरस रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए इस माउंट आबू जैसे अच्छी जगह पे आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आपका जो उद्देश्य है यहां, जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय पे मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा, दो बातों पे बोलना चाहूंगा। पहला ये है, जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय ये आभास होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, अपने आप से प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूं। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मैं किस लिए यहां आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन दो प्रश्नों का जवाब आपको बहुत विस्तार से आपके अगले 3 दिनों में मिलेगा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप से इन दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा माइक्रोफोन है, तो आपके शरीर में, माइक्रोफोन में, पुस्तक में कोई फर्क नहीं हुआ। हम सभी जगह कहते हैं ये मेरा है, मैं नहीं हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है, कि आप इसको पजेस करते हैं, ये मेरी, दिस इज माय बुक, दिस इज नॉट मी, दिस इज माय बुक, दिस इज माय पर्स, दिस इज माय बॉडी। तो आपके पर्स में, आपकी पुस्तक में और आपके शरीर में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। यही एक सच्चाई है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर इस सोचने के बाद ही आपको मिलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। इसका बहुत वेदों में, पुराणों में, पर्टिकुलरली उपनिषदों में बहुत उल्लेख हुआ है। इसको समझाने की बहुत कोशिश की गई है कि मैं कौन हूं। शरीर के, मनुष्य शरीर को मैं अंग्रेजी में बोलता हूं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कई लेयर्स हैं। सबसे बड़ा लेयर है शरीर जो है, उसके ऊपर इंद्रियां उसको शासन करती हैं। शरीर एक बहुत ही मिरेकुलस चीज है। इसका जो ऐसी चीज है कि आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, अंदर वो मांस बन जाता है, लहू बन जाता है, आपकी हड्डियां बन जाती हैं, आपका ब्रेन बन जाता है। देखिए कितना मिरेकल है शरीर में। जो इनएनिमेट चीज आप खाते हैं वो एनिमेट हो जाती है, अंदर जाके लाइव बन जाती है, इंटेलिजेंट हो जाती है वो अंदर जाके। ये एक शरीर का चमत्कार है। ये तो एक छोटा सा चमत्कार है। इस चेतन शरीर से ये जड़ केस निकलते हैं, आप इनको काट दें कुछ नहीं होता है। जड़ और चेतन का संयोग कैसे होता है? ये नेल, नाखून निकलते हैं, ये जीवित होते हैं, आगे जाके अजीवित हो जाते हैं, कैसे होता है? शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह कैसे होता है? साइंस के लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में बिलियंस सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, और उनमें मिलियंस रोज बदलती हैं, मर जाती हैं, नई पैदा होती हैं। मस्तिष्क जो है ह्यूमन का, मनुष्य का, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी संख्या ट्रिलियंस में बताते हैं, खरबों में बताते हैं। वो किस तरह से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, ये एक चमत्कार है। तो मनुष्य शरीर अपने आप में चमत्कार है। ये आपको कहता है कि अभी आपको खाना खाना है, भूख लगा देता है। अभी आपको आराम करना है, आपको थका देता है। अभी आपको टॉयलेट जाना है, आपको कहता है कि आप अपना वेस्ट बाहर निकालिए। ये आपको आदेश देता है शरीर, इतना जबरदस्त शरीर है। लेकिन ये शरीर आपकी पांच इंद्रियों से गवर्न होता है। अगर किसी आदमी अच्छी तरह से सुन नहीं सके, अच्छी तरह देख नहीं सके, अच्छी तरह बात नहीं कर सके, तो उसका शरीर जो है वो एक वेजिटेबल की तरह हो जाता है, जैसे वृद्धावस्था में कई बार हो जाता है। तो ये बड़ा शरीर जो है वो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा गवर्न होता है। फाइव सेंसेज ऑफ एक्शन, फाइव सेंसेज ऑफ परसेप्शन। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं है। इंद्रियां जैसे अभी बाहर फोग आ गया, आप देख नहीं सकते हैं, इतनी कमजोर हैं। आपकी इंद्री की बजाय कुत्ते की इंद्री ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो दूर तक स्मेल समझ लेता है, आपको किलोमीटर्स तक फॉलो कर सकता है। एक पक्षी देखिए, हजारों किलोमीटर बिना जीपीएस के, बिना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाने ट्रेवल करता रहता है। उसकी इंद्रियां आपसे ज्यादा तेज हैं। तो हमें इंद्रियों पे ऊपर ज्यादा गर्व होता है कि हमने देखा है, हमने सुना है। लेकिन ये इंद्रियां जो हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना हम समझते हैं उनको है। बहुत सी चीजें संसार की, जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल संसार में चीजें हैं, वो आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, इंद्रियों से समझ नहीं सकते। इस शब्द को मैं कहता हूं पावर ऑफ द इनसेंसिबल। जो इनसेंसिबल चीजें हैं, जो आपके इंद्रियों में ग्रहण नहीं कर सकते, उसका पावर आपको समझना चाहिए। जैसे मस्तिष्क, मन। मन जो है आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। मन को आप न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न उसको टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वो मन जो है आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो कानों से नहीं, क्योंकि आपका मन है इसलिए मेरे को सुन रहे हैं। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं कई बार बैठ के सामने टीवी पे, आधे घंटे आपने फिल्म देखी, आपको पता नहीं लगा क्या हुआ वहां, आपकी आंखें वहां हैं। आप पुस्तक पढ़ते हैं, 10 पेज आपने पढ़े, आपको पता नहीं आपने क्या पढ़ा, क्योंकि आपका मन कहीं शॉपिंग सेंटर में है, मन कहीं और घूम रहा है, स्कूल में घूम रहा है, आपकी बच्चों के साथ घूम रहा है। तो मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और मन सूक्ष्म होता चला गया। तो जैसे जैसे चीजें ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो ये शरीर को समझना, मैं कौन हूं, इसमें जो आपको ये सब बताएंगे कि जीवात्मा, एक चेतन तत्व है हमारे शरीर में जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। उस चेतन तत्व के निकल जाने से ये सारा शरीर एकदम से खत्म हो जाता है। न आपकी आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, न मुंह से आप खा सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं। यहां तक कि आपका शरीर सड़ने लगता है, आपको अंतिम संस्कार उसका करना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। तो वो जो तत्व है जो शरीर से निकल जाता है, जिसको न कोई समझ पाया है, अभी तक कोई मॉडर्न साइंस वाला नहीं समझ पाया, सिर्फ आध्यात्म ज्ञान से पता होता है। और उस तत्व को समझना ही सच्चा ज्ञान है। उसको समझने के लिए मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा, और ये हर व्यक्ति के साथ हर दिन होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। फिर भी अभी आप जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के आप सोएंगे, सोने के बाद आप एक स्वप्न की दुनिया में चले जाएंगे, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, ये सभाग्रह, माउंट आबू, ये जो हमारी देख रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। एक आप नई दुनिया क्रिएट करेंगे, उस दुनिया में आप एक एक्टर होंगे, आप उस दुनिया में काम करेंगे, उसमें आपके अलग दोस्त होंगे, आपका अपना अलग प्रयत्न होगा। कितना आसान होता है, देखिए हो गया। आपको पता भी नहीं लगता, ऐसे होता है एक सेकंड में। ये किसकी माया है, कैसे होता है? ये आत्मा की दूसरी स्थिति है। जो अभी आत्मा की स्थिति है उसको कहते हैं वैष्णवर अवस्था, जिसमें आप भौतिक चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो जो अवस्था है वो आत्मा की तेजस अवस्था कहते हैं उसको संस्कृत में। आत्मा तेजस अवस्था मतलब एक रे के रूप में, एक प्रकाश के रूप में उसमें आपके साथ रहती है, जबकि आपका शरीर उस समय नहीं रहता, आप खुद भी प्रकाश के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखिए आत्मा की सत्ता कितनी जबरदस्त है। उसके तुरंत बाद आप गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद में आप रहते ही नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, आप नहीं रहते उस समय, आपको पता नहीं आप कहां हैं। आप ही नहीं, गहरी नींद में एक सर्प भी रहता है, एक अगर हाथी भी रहता है तो उसको भी पता नहीं होता। और आपकी और हाथी की अवस्था और एक चींटी की अवस्था एक सी होती है उस स्थिति में। तो आप देखिए बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, बिना मस्तिष्क के आप अभी भी जिंदा रहते हैं, नहीं? जब उठते हैं आप कहते हैं मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, ये कैसे हुआ? तो वो सत्ता है आत्मा की। तो उस सत्ता को हमें समझना चाहिए। इस शरीर को, शरीर का ओनर जो है, पजेसर जो है, वो आत्मा है। जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम बिल्कुल, हमारा शरीर बेकार हो जाता है, वो पंच तत्वों का बना है, पंच तत्वों में वापस विसर्जित हो जाता है। तो ये पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न को आप अगर सोचेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूं, जो कि ब्रह्म कुमारी आपको हमेशा ये संदेश देती हैं। और जब आप ये सोचेंगी तो आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि आनंद, जॉय ऑफ लाइफ, आप आए क्यों हैं इस संसार में, किस लिए आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है? प्रत्येक प्राणी का, अभी नहीं, जन्म जन्मांतर से हजारों जन्म हम कर चुके हैं, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं सुखी बनूं, मेरे को आनंद मिले। और कोई उद्देश्य जीवन का न है न हो सकता है, यह संभव नहीं है। यह क्यों संभव नहीं है यह मैं आपको बताऊंगा। कोई आदमी है जो चाहता है कि मेरे को दुख मिले? कोई आदमी नहीं होगा आप में से जो चाहता है कि मेरे को दुख मिले। जन्म जन्मांतर से हम यह कोशिश करते हैं कि हम सुखी रहें। कोई आदमी धन इकट्ठा करता है इसलिए करता है कि वो समझता है कि इस धन से मेरे को सुख मिलेगा। कोई आदमी पावर इकट्ठा करता है और वो इलेक्शंस फाइट करता है, पॉलिटिकल पोजीशंस लेता है ये सोचकर कि इससे मेरे को सुख मिलेगा। कोई आदमी बच्चे पैदा करता है ये सोचकर कि मेरे को बच्चों से सुख मिलेगा। तो हर चीज मनुष्य जो करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को सुख मिले। लेकिन क्यों, क्यों होता है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए। ये एक, जैसे पानी की एक बूंद है, पानी को आप कहीं भी डालेंगे वो समुद्र में जाना चाहेगी, चाहे वो नदी हो, चाहे बर्फ का पहाड़ हो, उसका एक ही डायरेक्शन होगा कि वो समुद्र में जाए। हवा में, हवा को आप एक गुब्बारे में डाल दीजिए, उसका एक ही प्रयत्न होगा कि मैं गुब्बारा फाड़ के हवा में मिल जाऊं। आप जानवरों को जू में डाल देते हैं, उन जानवरों का एक ही प्रयत्न होता है कि मैं यहां से निकल के जंगल में चला जाऊं। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ ओरिजिन। आपका जो ओरिजिन है वो आपको उस तरफ ले जाता है। ये एक जीवन की सच्चाई है, हर क्षेत्र में ये सच्चाई है। तो आपका ओरिजिन क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, इससे आपको पता लगेगा कि आप आनंद क्यों चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सबका ओरिजिन आत्मा है और आत्मा परमात्मा से पैदा हुई है, परमात्मा का एक अंश है। जैसे सूरज से किरणें आती हैं वैसे परमात्मा से आत्माएं बनी हैं और हम उस तरह के, उसी परमात्मा के अंश हैं। उस परमात्मा का नाम, उसको समझना, उसका विस्तार से वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वेदों में, उपनिषदों में कहा गया कि उसको आप न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, न सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ समझाया है। एक बहुत साधारण सा शब्द हम रोज काम में लेते हैं, उस शब्द का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें तीन शब्द हैं, सत, चित, आनंद, और ये तीनों परमात्मा की बहुत ही जबरदस्त एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज या विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सत पे बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए, सत क्या है, लेकिन सत का मतलब है जो नश्वर है, जिसका कोई न आदि है, न मिडिल है, न अंत है, जो हमेशा रहता है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है, जिसका समय से प्रभावित नहीं होता कोई भी चीज, समय उसको परास्त नहीं कर सकता। चित्त वो है जिससे चेतना मिलती है, जिससे हमारा जीव है, वो जीव जब तक शरीर में रहता है वो खुद भी जीवित रहता है और हमको भी जीवित रखता है, वो चेतना है वो। और उसके साथ उसमें इंटेलिजेंस, उसमें एक बुद्धि भी होती है, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन का पावर होता है, वो रैशनैलिटी, रीजनिंग करता है, ये एक चेतना का काम है। सत चित और आनंद, आनंद जॉय, इटर्नल जॉय। सो दीज, ये तीनों जो हैं वो परमात्मा की क्वालिटीज हैं, परमात्मा के ये तीन विशेष गुण हैं। कई गुण हैं परमात्मा के, लेकिन ये तीन विशेष गुण हैं जिनको सच्चिदानंद के रूप में व्यक्त किया गया है अपने शास्त्रों में। क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं, इसलिए हम में भी ये तीनों गुण हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी की एक बूंद में वही गुण होंगे जो पानी के एक समुद्र में होते हैं। समुद्र से आप एक बूंद निकालिए, वो सारे गुण उस बूंद में होंगे जो समुद्र में होते हैं। अभी आजकल तो साइंस कहती है कि आपका एक हेयर लेके उससे आप वो सारे के सारे रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बॉडी को है? तो वो के वो गुण प्रत्येक स्मॉल से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी होते हैं उस चीज के, तो वो गुण हमारे में भी हैं। इसीलिए हमारी आत्मा अमर है, अजर है, मतलब सत है आत्मा, वो गुण है हमारे में। और आत्मा चेतन है क्योंकि वो चित्त है, और आत्मा को आनंद चाहिए क्योंकि वो आनंद है, आनंद का सोर्स है। इसलिए हम सब लोग जीवन भर और कई जीवन से, कई हजारों जीवनों से, हजारों जन्म जन्मांतरों से हम आनंद ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे में भी वो तीनों गुण हैं, सच्चित और आनंद। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको इस विषय पे अगले दिनों में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत गहरा और विस्तार से सुनने को मिलेगा। मैंने तो सिर्फ उन सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मैं भारत का उच्चायुक्त हूं त्रिनिदाद और टोबैगो में। आप उस कंट्री के बारे में मैं दो शब्द कहूंगा कि वो छोटा देश है, लेकिन वहां की 43% जनता भारत मूल की है, और वहां पे भी टेंपल हैं, वहां पे ब्रह्म कुमारीज के का काफी बड़ा मंदिर भी है, इनका राजयोग का बहुत बड़ा सेंटर है, और वहां पे इनका कार्य बहुत जोर शोर से चलता है। सिस्टर हेमलता वहां की इंचार्ज हैं, और उस इलाके में और कई ऐसे देश हैं जहां पे भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं, इसलिए वहां पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति काफी अच्छी तरह से आपको मिल सकती है। आप वहां मंदिर में बैठ के हवन भी कर सकते हैं, दीपावली और होली भी वहां खेल सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपका यहां तीन दिन का जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और आप लोग इससे कुछ सीख के, खुद ही नहीं सीखेंगे और आगे भी लोगों को सिखाएंगे। और मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे को बुलाया और ये सम्मान प्रदान किया। मैं समाप्त करूं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप संसार में कहीं भी जाएं, जो पब्लिक प्लेसेज हैं, जैसे गार्डन हैं, सड़कें हैं, बीचेज हैं, इतने गंदे कहीं संसार में नहीं मिलेंगे जितने भारतवर्ष में मिलते हैं। मैं संसार के 90 से ज्यादा देशों में भ्रमण कर चुका हूं और मैं अपने प्रत्यक्ष के आधार पर कह रहा हूं कि हमारे देश में गंदगी बढ़ती चली जा रही है फिजिकली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर आदमी प्रण ले कि हम पब्लिक प्लेसेज में, चाहे वो रेलवे का डिब्बा हो, चाहे वो सड़कें हो, अपना गंदगी नहीं डालेंगे। गंदगी को हम इकट्ठा करके एक सुनिश्चित तरीके से डालेंगे और इसी तरह हम और दूसरे लोगों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि हमारा देश सुंदर बने, क्योंकि ऋषियों और मुनियों का देश है जहां पे स्वच्छता और शुद्धता की बहुत बहुत चर्चा की गई है। हम चाहेंगे कि हम उसी देश की संस्कृति को वापस लाएं। धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप एक विशेष उपहार लेकर आए हैं जो आप हमारी आदरणीय मीरा दीदी जी को भेज कर रहे हैं, और साथ में जो आपकी पुस्तक है वो भी आप मीरा दीदी को देंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई भ्राता गुप्ता जी कि आपने जो ये बात कही कि हरेक ये संकल्प ले कि हम कोई भी सार्वजनिक स्थान को, कोई भी पब्लिक प्लेस को हम अस्वच्छ नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखता है तो एक से अनेक धीरे धीरे ध्यान रखने लगते हैं। तो ये एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे भ्राता जी ने बताया कि अगर एक टूरिस्ट आता है तो 9 लोगों को रोजगार मिलता है। और आप सोचिए, हमारे भारत के जो भाई बहन हैं, अगर एक के आने से 9 को रोजगार मिले, और हम अगर अपने देश को, देश छोड़िए आप अपने घर के बाहर जो सड़क है जहां पर आप चलते हैं उसको आप साफ रखें, तो कितना जो बाहर के लोग हैं वो यहां पर आएंगे। तो इस बात का भी, इस हम सेमिनार कम रिट्रीट में एक संकल्प लें तो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय मीरा दीदी जी। राजयोगिनी मीरा दीदी 52 ईयर्स से राजयोग की साधना के पथ पर हैं। दिव्य गुणों की धनी सम्माननीय मीरा दीदी मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के सांताक्रूज सब जोन की आप सब जोनल हेड हैं। इस जोन में जो भी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हैं, उनका आप बड़े सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं। और साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सांताक्रूज वेस्ट में एक बगीचा है जो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा वहां पर हमें संभालने के लिए मिला हुआ है। दीदी वहां स्वयं खुद रोज जाती हैं और वहां के जितने भी आसपास के लोग हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉमन मासेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये सभी वहां पर आते हैं, वहां पर लाभ लेते हैं बहुत, क्योंकि वो स्थान ऐसा बनाया हुआ है। और ठीक वैसे उस गार्डन का खुलने का टाइम होता है और वहां पर लोग खुलने से पहले ही आ जाते हैं, उनको वहां बहुत अच्छा लगता है। और खुद दीदी वहां बहुत संभालती हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल वहां पर कोई आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती है, लेकिन साथ साथ वहां के जो पेड़ पौधे, वहां का जो इन्वायरमेंट है और मेडिटेशन हट जो बनाई हुई है, बहुत से लोग वहां पर आते हैं और वहां पर आकर इसका लाभ लेते हैं। साथ ही साथ हमारी दीदी जो है वो वाटुमल सेनेटोरियम ट्रस्ट एवं द टाइम्स फाउंडेशन के वुमेन मूवमेंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के भी आप ट्रस्टी हैं। सेवा आपकी आराधना है और इसीलिए आपने बहुत से भारत के बाहर बहुत से देशों में जाकर, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय हैं जैसे यूरोप के कई देश, अमेरिका, कनाडा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मिडिल ईस्ट, इनके कुछ देशों में जाकर आपने अनेकों को आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक किया है। और सरलता, सहजता, मधुरता का त्रिवेणी संगम है। एक बात जो आप लोग शायद अभी इन तीन दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी एक विशेष खूबी है, मैं जो शुरू से ही देखते आई हूं, और वो ये है कि जब भी आप किसी से भी मिलती हैं, उनके एक बहुत सुंदर सी स्माइल चेहरे पर होती है, और जो उनसे मिले हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूं कि जहां भी मीरा दीदी जाती हैं वहां पर वो प्रसन्नता के फूल बिखेरती रहती हैं, और इसीलिए वो अपने मुख से नहीं लेकिन अपने एक्सप्रेशन के द्वारा ये सबको बताती हैं कि हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। और आज आप इस मंच की विशेष अध्यक्षा हैं, तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूं कि आज के सेमिनार में आपके हम सबके प्रति क्या आशीर्वचन है, तो आप अपना आशीर्वचन हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी।
ओम शांति। सुख के सागर, खुशियों के सागर, आनंद के सागर, मौजों के सागर, परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, यहां पर मंच पर उपस्थित आदरणीय गौरी शंकर गुप्ता जी, माननीय सतीश भाई सोनी जी, आदरणीय संजय भाई जैन, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, रवि भाई, सुमन बेन, कमलेश बेन, और अलग अलग स्थानों से पधारे हुए आप सभी डेलीगेट्स, गेस्ट भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ आज का जो थीम है, पूरी ही रिट्रीट का जो थीम है, जॉय ऑफ लाइफ, ये बहुत सुंदर थीम है। जीवन एक मधुर यात्रा है और इस मधुर यात्रा को हम सभी बहुत श्रेष्ठ रीति से आनंदित कर सकते हैं, प्रसन्नता से भरपूर कर सकते हैं, खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। जब हम जीवन में खुशी, आनंद और प्रसन्नता लाते हैं तो यह जीवन एक सुंदर, सरल, सहज और सफल रीति से व्यतीत होता है। यह भी एक आर्ट है जीवन की, जो हम सभी बहुत अच्छी तरह से और इजीली अगर हम चाहें तो हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। वैसे कहा गया है कि यद ध्यायति तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम हमारे जीवन में फर्म डिटर्मिनेशन करते हैं कि मुझे आनंदित ही रहना है तो जरूर हम रह सकते हैं। और साथ साथ हमें वर्तमान समय में भी रहना होगा। वैसे भी कहा गया कि जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला कल है वो कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो अपना है, वर्तमान तो हमारे हाथ में है। और जब वर्तमान हमारे हाथ में है तो हम खुशियों से उसको भरपूर कर सकते हैं, ताकि भविष्य का आधार भी ये वर्तमान है और ऐसा ही हमारा भविष्य भी होगा। जब कोई पास्ट की दुख की बातों को याद करता है, ऐसी कोई घटनाओं को याद करता है, तो स्वयं ही दुखी हो जाता। तो बीता सुबीता यहां की एक बहुत मुख्य शिक्षा है कि पास्ट इज पास्ट, हमें फुल स्टॉप करना है। सुखद बातों को हमें याद करना है। साथ साथ हम सब जानते हैं कि चिंता और चिता समान है। चिंता करने से होगा कुछ भी नहीं, और भी कार्य बिगड़ जाता। 4-5 दिन पहले ही सेंटर के ऊपर, राजयोग मेडिटेशन सेंटर में, एक स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई एक स्टूडेंट कन्या आई थी। तो उसको हमने पूछा कि आप खुश हैं, आप कैसे हैं? तो कहा टेंशन है। तो हमने कहा कि किस बात का टेंशन है? तो कहा पढ़ाई का, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो कहा पढ़ाई का और साथ साथ एग्जामिनेशन का। तो हमने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है टेंशन रखना, पढ़ाई जरूर पढ़नी है लेकिन टेंशन रख करके नहीं। तो कहा नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो देखिए आजकल टेंशन को सभी नॉर्मल मानने लगे हैं और खुशियों को भूल गए हैं। सुबह से रात्रि तक हम देखते हैं कि मनुष्य का जो लक्ष्य है, जो इच्छाएं हैं, जो नीड है, वांट है, वो सारी है ही हैप्पीनेस के लिए, और इसलिए ही भागते दौड़ते रहते हैं। परंतु वो दूर क्यों चली जाती है? कारण आप सोचिए कि जब कोई भी खुशी की बात होती है जीवन के अंदर, जैसे कि इन आंखों से हमने कोई चीज बहुत सुंदर देखी, जब हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। कानों से हमने कोई बहुत अच्छी बातें सुनी, जब सुन रहे हैं, जब तक हमें याद है तो खुशी बहुत है। कुछ हमने ऐसा खाया, टेस्ट ऐसा किया, जब तक वो टेस्ट हमने किया तब तक खुश है हम। लेकिन यह खुशी ये सदाकाल की है? हम सोचे तो ये सदाकाल की खुशी के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रू सेल्फ, मैं स्वयं जो हूं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, जो आप आने वाले 3 दिनों में आप यहां पर जरूर इस बात को जानेंगे। शिविर होती है यहां सुबह में 7 से 8:15 तक। वो जब आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सी सारी बातों की जानकारी होगी और ज्ञान होगा। साथ साथ यहां का सारा जो माहौल है, वातावरण है, वो इतना सुंदर है कि आप यहां मेडिटेशन रूम जो है वहां पर भी जाकर के, जैसे ही आपको समय मिला तो वहां पर जाकर के आप बैठेंगे तो भी आपका मन बहुत आनंद से भर जाएगा। वैसे हमारे जीवन के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी खुशी गायब हो जाती है, और वो बातें हैं टू मच सेंसिटिव नेचर। बहुत ज्यादा जल्दी से बुरा लग जाता, मूड खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव नेचर है। तो सेंसिटिव नेचर न रख करके हमें अपना स्वयं का स्वभाव स्ट्रांग बनाना है। वैसे भी कहा जाता कि डू नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस टू टेक अवे अवर स्माइल। चेहरे पे जो हमारी मुस्कुराहट है, उससे जो कई हमारी चेहरे पे नर्व्स हैं, वो हमेशा रिलैक्स रहती है। और ये कौन कर सकता है? ओनली वन पर्सन कैन मेक हैप्पीनेस। और वो पर्सन कौन है? ओनली वन पर्सन कैन मेक यू हैप्पी एंड ओनली वन पर्सन कैन मेक यू अनहैप्पी। तो वो व्यक्ति कौन है? गो एंड लुक इन टू द मिरर, स्माइल एंड से हेलो। वो हम स्वयं खुद ही है। ये हमारे पर ही निर्भर है, हम अपने आप को कितना खुशी से भरना चाहते हैं हमारे पर है। खुशी, आनंद, प्रसन्नचित रहना, ये हमारी स्वयं की ही रचना है, ये हमारी स्वयं की प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर सिर्फ हमारा ही हमारा अधिकार है। तो इसीलिए सारी बातों में आधार हम स्वयं ही है। दो बातें कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी होती हैं जो खुशी को गायब कर देती हैं, और वो दोनों डेंजरस है। एक है मिस्टर और एक है मिस। मिस्टर है मिस्टर डाउट और मिस है मिस अंडरस्टैंडिंग। जब आपस में मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं, या तो किसी के प्रति परिवार के अंदर भी जब शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, विश्वास कम हो जाता है, तो भी जीवन में जो प्रसन्नचित हमारा होना चाहिए वो नहीं रहता। समय और शक्तियों का जब सदुपयोग होता है तो भी हमारे जीवन में बहुत खुशी होती है। और ये जो खुशी है वो ऐसी है जो हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों को ही पुष्ट कर देती है, और इसलिए भी खुशी हो। आप देखेंगे कि कई ऐसे जिन्होंने संन्यास धारण किया है, उनका नाम उन्होंने चेंज किया है, परमानंद, मुक्तानंद, चिदानंद, विवेकानंद, दयानंद, सच्चिदानंद। तो ये सारे ही नाम के पीछे क्या है अब बताएंगे? आनंद शब्द है। तो जीवन में आनंद ही हमारे लिए मुख्य है, और इसीलिए ही ये जो विंग है और उसमें सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में होते हैं, परिवार में भी होते हैं, उनके कॉलोनीज में भी होते हैं, और जहां जहां प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर उनको बहुत लाभ मिला है। चाहे एविएशन का है फील्ड, चाहे टूरिज्म का है, चाहे शिपिंग का है, जिससे राजयोग मेडिटेशन भी सीखते हैं। और जब लेक्चर्स वहां पर अटेंड करते हैं तो फीडबैक देते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा हमें मेडिटेशन लगा, और उसमें हमें बहुत ही शांति प्राप्त हुई और आनंद मिला। तो ये राजयोग मेडिटेशन और काफी अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बिल्डिंग टीम स्पिरिट, स्टॉप वरिंग स्टार्ट एंजॉयिंग आदि आदि जो लेक्चर्स देते हैं, उसमें एक तो विल पावर उनका बढ़ जाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, कॉन्सेंट्रेशन उनका बढ़ जाता है, टेंशन से मुक्ति मिलती है, अनवांटेड जो हैबिट्स होती हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है, और वैल्यूज भी जीवन में धारण करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आज कल के समय में क्या होता, एक व्यक्ति ने भगवान को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो ऐसा ये समय है तो ऐसे समय में वैल्यूज भी जीवन में धारण होती सही रीति से, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, रिस्पेक्ट, लव, पीस, तो ये जीवन में धारण करना बहुत अच्छी रीति से शुरू करते हैं। साथ साथ जो भी चैलेंजेस आती हैं, चाहे फैमिली से चाहे प्रोफेशनल कोई भी रीति से, तो वो चैलेंजेस का बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। और समय ऐसा है कि कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे समय में अपने आप को कॉरपोरेट सेक्टर को कोपअप करना ये भी उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये विंग्स के जो लेक्चर हैं और राजयोग मेडिटेशन है वो इसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। साथ साथ जीवन जो है वो बहुत सेफ और बहुत ही सेफ्टी के साथ साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं, और इसीलिए भी ये लेक्चर सारे सभी पसंद करते हैं। तो यही कहूंगी कि ये जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विथ जस्ट ए सिंगल स्टेप, और वो स्टेप यही होगा कि आज से हम सभी दृढ़ संकल्प करेंगे अपने मन के अंदर कि चाहे हमारे सामने कोई भी सिचुएशंस आए, लेकिन हम अपनी अंदर की आंतरिक खुशी को क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जाने नहीं देंगे, लेकिन हम अपने पास ही वो रखेंगे। वैसे तो कहा गया ना कि ऑल ऑफ अस वी लव टू ट्रैवल आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड ट्रैवल के साथ साथ हमें अभी क्या करना होगा, आंतरिक जगत की यात्रा भी हमें करनी होगी जिससे हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाए। और इसीलिए कहूंगी लास्ट में कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे, और वो शुरुआत आज से होगी। और आप सभी संदेशवाहक बनकर के जहां भी आप जाएंगे अपने अपने स्थानों पर, तो अपने परिवार में अपनी ऑफिस में ये बात जरूर उनको कहेंगे और संदेशवाहक आप बनकर उनको ये बातें संदेश के रूप में देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत ही जल्दी से आनंद की जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता, जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और वो आत्मा का जो आनंद है वो हमें प्राप्त होगा, और वही हम सभी चाहते हैं, यही हमारी शुभ भावना है और शुभकामना है। ओम शांति। हम सभी तीन बार हम सभी बोलेंगे और आप सब साथ में बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीरा दीदी, आपने हमें ओम शांति का मंत्र देकर साथ साथ खुशी खुश रहने का एक अच्छा मंत्र दे दिया। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप आई, और मीरा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय हमारे जो आज के यहाँ के आदरणीय मेहमान भाई हैं उन सबको आप शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगी। आदरणीय मीरा दीदी, साथ साथ उनको प्रभु प्रसाद भी दिया जाएगा। आप सभी तालियों से सहयोग देते रहेंगे। हमारे आदरणीय मेहमानों को सम्मानित किया जा रहा है और अभी मैं भ्राता रविंद्र भाई जी को विशेष रूप से आमंत्रित कर रही हूँ आभार विधि के लिए। मैं रविंद्र भाई की विशेष बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुमार हैं, 25 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और इन्होंने इस ज्ञान को इस कदर जीवन में लाया है कि आप जो आपके जीवन से प्रभावित होकर बहुत से जहां पर आप कार्यरत हैं बहुत से भाई बहन उससे प्रभावित हुए और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के 110 भाई बहन हमारे बीच मौजूद हैं और हर वर्ष वहां से आते हैं क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में इस समय इंजीनियर के पद पर रत हैं और यदि आप देखेंगे इनसे बात करेंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही हम्बल हैं। मुंबई से आप पधारे हैं तो भ्राता रविंद्र भाई जी से निवेदन है कि आप आभार विधि प्रकट करें। आदरणीय भ्राता रविंद्र जी,
ओम शांति। आप सभी खुश हैं क्योंकि आप सभी ने इतने सारे हमारे महानुभवों का अनुभव सुनने के बाद, विचार सुनने के बाद मन खुशियों से भर जाता है। जैसे भोजन के बाद हमारा पेट भर जाता है, ऐसे विचार सुनकर मन खुशियों से भर जाता है। तो ये तो आपने एक झलक देखी है और भी कल आप 2-3 दिनों में जब देखोगे तो मन खुशियों से गदगद हो जाएगा, जिससे पता लगेगा। क्योंकि मेरा ही अनुभव है कि यहां से जब कदम निकलते हैं माउंट आबू से तो मन भर जाता है, ऐसे लगता है कि वो दुनिया न हो बस यही दुनिया हो। तो शायद मुझे लगता है कि आप भी ऐसे इस जॉय ऑफ लाइफ के सेमिनार में पहुंचे हैं। 3 दिन में अगर सच्ची दिल से अगर आपने ये अटेंड किया, जैसे दीदी ने आप सभी को बताया है सभी प्रोग्राम, और उन विचारों को अगर आपने जीवन में चिंतन में भी लाया दिन भर में, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी खुशियों से गदगद होकर ही यहां जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आए बिना रहेंगे नहीं। आप सभी भी हमारे बड़े महानुभाव यहां बैठे हैं तो जॉय ऑफ लाइफ ये संकल्पना आज हम सभी यहां साकार कर रहे हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा हमारे परम पिता परमात्मा को जो हमारे आनंद का सागर है, हमारे लिए खुशी का सागर है। क्योंकि परमात्मा का नाम लेते ही सब दुख दूर हो जाते हैं, इसीलिए उसको कहते दुख हरता सुख करता। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा कि यह संकल्पना किसी के तो मन में आई और वो साकार की, और इसीलिए आप सभी यहां इकट्ठे आए हैं। दुनिया में खुशी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, आप भी यहां पहुंचे हैं, इसीलिए उस परमात्मा का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा। साथ साथ हमारी आदरणीय दीदी माँ मीरा दीदी, आप सभी ने सुना ना, उनके पास आप जब जाओगे ना तो ऐसी ही खुशी की महसूसता आती है। मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि उनके पास जाता है ना तो क्या पूछना है ना वही मैं भूल जाता हूं। मैं जाता था कि दीदी ये मुझे चाहिए, लेकिन मैं भूल जाता हूं और वहां से मुझे सब कुछ मिल जाता है, ऐसी मेरे ये उनके पास जाने से मेरी मान्यता है। इसलिए आप भी ये अनुभव जरूर करना। ऐसी दीदी माँ का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम की रचना रची और हमारे सभी भाई बहनों को बुलाया। आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट हमारे भ्राता गौरी शंकर गुप्ता जी, उन्होंने बहुत अच्छे विचार आप सबके सामने रखे, शांतपूर्ण सभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें लगी। तो आपने भी अपना समय यहां निकालकर यहां पहुंचे और इस वातावरण का आनंद लेने के लिए आप यहां आए, इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे भ्राता जी सतीश सोनी जी, आपने भी अपने विचारों के आधार से सभी को आमंत्रित किया कि भाई आप सभी आइए, घूमने के लिए आइए। तो इसीलिए आप सभी भी यहाँ आए और औरों को भी लेकर आना, क्योंकि आपका अनुभव आप वहां जाकर बताएंगे तो वो लोग भी आने के लिए उनके मन में होगा कि मुझे जाना है, ऐसी खुशी पानी है। तो ऐसे हमारे भ्राता सतीश सोनी जी को भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे बीच में संजय जैन जी हमारे बीच में पधारे न्यू दिल्ली से, आपने भी अपने विचार हमारे सामने रखे और हमारे लिए यहाँ समय दिया, आपने संस्था की जानकारी के लिए, प्राप्ति के लिए आपने सब कुछ जो कहा कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप 3 दिन में ये सब बातें जानेंगे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे ग्रीटिंग्स देने के लिए हमारे पास पहुंचे थे हमारे भ्राता भानु प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं डॉक्टर बिन्नी बहन का भी स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर हमारे भानु प्रताप सिंह जी को तैयार किया और उनको यहां बुलाया, इसीलिए बिन्नी बहन के लिए भी आप सभी तालियां बजाना, क्योंकि तो बहुत बहुत मेहनत की और उनको यहां बुलाया। तो बिन्नी बहन का भी धन्यवाद, साथ साथ हमारे भ्राता सिंह जी का भी धन्यवाद। और आप सभी को मैं कहूंगा कि आप लोगों को सबको इंट्रोड्यूस कराया हमारी कमलेश दीदी जी, आप सभी ने सुना ना कमलेश दीदी को, आप कल भी उनको या कभी परसों उनका जब होगा आप भी सुनेंगे। हमारे कमलेश दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने सभी को बहलाया भी और सब कुछ हमारी जो जॉय ऑफ लाइफ के लिए जो बातें हैं वो भी बताई। और हमारी सुमन बहन ने आप सभी को ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया ना, क्योंकि कई भ्रांतियां होती है वो भी उन्होंने निकाल दी, सब कुछ बता दिया कि क्या क्या होता है, घर बार छोड़ना नहीं, वाइट ड्रेस पहनना नहीं है, आप जैसे वैसे ही रहना है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं सिर्फ 15,000 और आप जैसे लोग हैं कितने, करेक्ट, तो आप समझ गए ना। तो ऐसे आपको कितना सारा जो भी बातें हैं वो क्लियर बताई, ऐसे हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी यहाँ इतना समय बैठे है ना, कहाँ कहाँ से सारे ऑर्गेनाइजेशन से पधारे हैं, तो आप सभी का भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार अपने लिए ताली बजाना, क्योंकि तो आप न होते तो मजा कहाँ आती, आप यहाँ से पधारे समय निकालकर 3 दिन के लिए, तो इसीलिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति।
रविंद्र भाई जी ने सबका धन्यवाद किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ कुमारी रुचिता जिन्होंने नृत्य के द्वारा हमको बहलाया, और हमारा मधुरवाणी ग्रुप, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एवं हम कैसे भूल सकते हैं हमारे ज्ञान सरोवर के विभिन्न प्रभागों को, जिनके इतना अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है आपको पता भी नहीं लगेगा, और जिनके कोऑर्डिनेशन से, जिनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे जितने भी यहाँ के विभाग हैं, उनके विभाग के प्रमुख, साथ साथ उनके सभी सेवा साथी भाई और बहनों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ।